हर साल हजारों पौधे और घास हमारे गिर्दो पेश उगते हैं, जिनका ना तो हम नाम जानते हैं और ना ही इनके खवास का हमें इल्म होता है। इन घास पौधों में फूल भी खिलते हैं और तौलीदे मिसल भी होती हैं। फितरत के अंदर रोज़ाना नई नई तब्दीलियाँ और इकोसिस्टम का ये तगैर इस बात का बायस बनता है कि बेशुमार घास पौधों के साथ लातादाद नाशनाख्ता जमादात और हैवानात और हशरात भी मारज़ वजूद में आते हैं, और ये सब इंसानी ज़िंदगी बेशुमार बरकतों और बराह रास्त या बिलवास्ता फ़वाद के हामिल होते हैं। हमारे गिर्द पेश और फितरत में ऐसे बेशुमार पौधे और जड़ी बूटियां हैं जिनके शनाख्त और जिनके मुमकिन फवायद के हुसूल के बारे में इंसान बरसों से तहकीक कर रहा है। ईरान का सूबा मशरिक़ आज़रबाईजान 46,929 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है और जुग्राफियाई और कुदरती मनाजिर नीज़ फितरत और नेचर के एतबार से ख़ास अहमियत का हामिल हैं। आबो हवा, जुग्राफियाई पोजिशन, ऊँची ऊँची पहाड़ियों और मौसमी बारिशों की वजह से इस सूबे में तरह तरह की घास और पौधे नज़र आते हैं। सरसब्ज, शादाब, मैदानी इलाके और जंगलात आम तौर पर करदाग, बसगोश, सहन, मीशू, मुसत्तह ज़मीनों और पहाड़ों के दामन नीज दश्त व बयाबान में दूर दूर तक फैले हुए हैं। हमारी आज की ज़िंदगी हमारे असलाफ और बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से काफ़ी मुख्तलिफ है। हम कभी बहुत ही मामूली और जुज़वी बीमारी के इलाज के लिए अपनी पसंद के डॉक्टर के पास जाते हैं और कभी ख़ुद से कुछ ऐसी दवाएं ले लेते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सवाल यह है कि हम जड़ी बूटियों और घास पौधों का दवाओं के तौर पर कितना इस्तेमाल करते हैं। शायद हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में कई तरह की जड़ी बूटियां भी होती हैं, लेकिन उनके तरीक़े इस्तेमाल और मकदार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हम इन जड़ी बूटियों को ख़रीदते तो ज़रूर हैं मगर उनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। मॉडर्न तिब पेचीदा भी है और उसके अखराजात भी ज़्यादा हैं। आलमी इदारे सेहत के आदाद व शुमार में बयान किया गया है कि दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो मामूली नौयत की बीमारियों का इलाज तिब्बे गियाही या हर्बल मेडिसन से करते हैं। एक और आदाद व शुमार में बताया गया है कि 119 केमिकल मेडिसन या एलोपैथिक दवाएँ ऐसी हैं जिनमें जड़ी बूटियां शामिल होती हैं, और उनमें 74% दवाएं जदीद मेडिकल में इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं जिन मकासद के लिए हज़ारों साल कबल हमारे असलाफ और बुज़ुर्ग माजी में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते थे। उस दौर में जब कोई इंसान किसी बीमारी में मुबतला होता था और अपने आस पास ही उसके इलाज की कोशिश करता था तो जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। जो तारीखी कतबे आज दस्तियाब हैं उनके मुताबिक चीन और मिस्र की कदीम तहजीब व तमद्दुन में ये मिलता है कि घास पौधों और जड़ी बूटियों से ही बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता था। एक ज़माने में अफ्रीकी और अमरीकी इलाकों के बाशिंदे अपने मजहबी प्रोग्रामों में भी घास पौधों को बड़े एहतराम से रखते थे। आज भी ईरान के सूबे मशरिकी आज़रबाईजान में स्पंद के दाने को जलाकर अपने घर और दुकान के अंदर उसका धुआं देने का रिवाज बाकायदा पाया जाता है। स्पंद के दाने में जो कीमियाई मवाद पाए जाते हैं वह एल्कोलाइट पर मुश्तमिल हैं। मिसाल के तौर पर उसमें हार्मिन भी होते हैं, पेस्ट्रिन भी पाया जाता है। इस स्पंद में हार्मालिन और हार्मालून भी पाए जाते हैं। स्पन का धुआं घर और दुकान में पाए जाने वाले जरासीम को मार देता है। स्पन का दाना जिसमें जहरीला मादा होता है, अरबों की कदीम तबावत में नीम की दवा मौर्रख बैक्टीरिया को मारने और ख्वातीन के महाना हैज को मुनज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब दुनिया के मुख्तलिफ अकवाम अपने मजहबी प्रोग्रामों में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थीं, उसी ज़माने में तरक्की याफ्ता और कदीम तहजीबें इन मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और घास पौधों के खवास की शनाख्त करके उनसे मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेफादा करती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ मुहक्किकीन को इस बात का इल्म हुआ कि कदीम दुनिया के मुख्तलिफ तहजीबें मिलती जुलती घासों और जड़ी बूटियों को इलाज व मुआलजे के लिए यकसां तौर पर इस्तेफादा करती थीं। ईरान में रफ़े अमराज के लिए जड़ी बूटियों के इस्तेमाल और हर्बल की रविश के इलाज की तारीख 2500 साल पुरानी है। यूनानी मौरखीन का कहना है कि हखामनशी कुरूश के फौजियों की शुजात व बहादुरी और जिस्मानी ताकत का राज बोला कुव्वती नामी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल था। बोला कुव्वती ज़मीन पर बिछी हुई मगर लंबी शाखों वाली एक घास है जो काफ़ी ज़खीम होती है और जिसके रेशे खासे मोटे होते हैं। आबो हवा के एतबार से इस घास की शाखों की लंबाई 2 मीटर तक भी होती है। इसकी सफ़ेद रंग की और छोटी जड़ें जालियों की शक्ल में होती हैं और वही इस घास को ज़मीन के अंदर मजबूत रखती हैं। ये घास सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान के उन इलाकों में खुद से उगती है जहाँ आम तौर से पानी का गुज़र रहता है, ख़ास तौर पर अरस बारान जंगलों के किनारे और कूह सहन के दामन में इसे ज़्यादा दरियाफ्त किया जा सकता है। सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान साल के बेशतर अवकात में बहरे रूम से उठने वाले मानसून से तर रहता है और मानसून की बारिश का बेशतर हिस्सा सूबे के पहाड़ी इलाकों को सैराब करता रहता है। इसके अलावा कूह सहन की बुलंदियों पर मौजूद बर्फ भी पिघलकर नीचे की जानिब बहता रहता है और पहाड़ के दामन में मौजूद नहरों और नदियों को पुर करता है। नतीजे में वहाँ बोलाकूती घास खूब पैदा होती है। ये घास 2500 साल कबल भी दलदली इलाकों और जिन जगहों से पानी का गुज़र रहता था वहाँ पाई जाती थी, इसलिए कहा जाता है कि हखामनशी हुकूमत के फौजी इस घास को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सवाल यह है कि इस घास में जिस्मानी सलामती को बेहतर रखने और इलाज व मुआलजे के लिए कैसे खवास पाए जाते हैं कि जिनकी वजह से हखामनशी हुकूमत के फौजी इसका भरपूर इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, बोलाकूती या वाटर क्रेस नामी इस घास के खवास और उसमें पाए जाने वाले केमिकल मवाद का पता लगाने के लिए हमने तबरेज़ की एक लेबॉरेटरी का रुख किया। इस घास पर टेस्ट मुकम्मल कर लिए जाने के बाद ये नतीजा निकला, चश्मे की घास या बोलाकूती घास में ग्लूकोसाइड आयल एसेंस पाया जाता है। इस घास में ग्लूकोसाइड नाम का सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, लोडीन और बड़ी मकदार में प्रोटीन, नीज खासी मकदार में विटामिन ए और सी पाई जाती है। इस घास का बालाई हिस्सा खून के तस्फिये, दर्द के खात्मे, मैदे में मरोड़ की तकलीफ को ख़त्म करने, नीज आसाबी दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये जिस्म में कुव्वत भी पैदा करती है, भूख बढ़ाती है, मैदे के लिए मुकव्वी है। ये वो खवास हैं जिनकी डॉक्टरों ने तस्दीक की है। सरजमीन ईरान की एक अहम और मुमताज़ खसूसियत यह है कि यहाँ आबो हवा मुख्तलिफ होती है और तरह तरह के घास पौधे और जड़ी बूटियों का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला मौजूद है। यहाँ जेनेटिक ज़खायर भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ईरान में 10 से 12 हज़ार अकसाम की दवाओं से इस्तेफादा किया जाता है और तिब्बे इस्लामी और ईरानी दवाओं का बुनियादी और अहम ज़रिया समझा जाता है। ईरान के शुमाल मगरबी पठार इलाक़े का मशरक़ी आज़रबाईजान कदीम ईरान का ही हिस्सा है जो शाहराह अब्रेशम पर वाक़ था اور اس راستے میں تبریز ایک اہم اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر کہلاتا تھا۔ چھ سو اٹھارہ ہجری قمری میں ایک ناخوشگوار واقعے نے ایران کی ترقی و پیش رفت کی رفتار کو روک دیا۔ منگولوں نے جنہوں نے سلطان محمد خوارزم شاہ کا آذربائیجان تک پیچھا کیا تھا، راستے میں پڑنے والے بہت سے شہروں کو لوٹ کر انہیں تباہ و برباد کر دیا تھا اور راستے میں پڑنے والے شہروں کی ہر چیز کو آگ لگا دی تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور سلطان محمد خدا بندہ معروف طبیب اور وزیر و مورخ خواجہ رشید الدین فضل اللہ حمدانی کے دور میں رب رشیدی نام سے ایک بڑی اسلامی اور علمی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کی عمارت انتہائی خوبصورت تھی۔ اس عمارت کی سبھی بلڈنگیں، جن میں کاغذ سازی، پارچہ بافی، دارو ضرب، بازار، حمام اور کاروان سرا سڑکیں اور رفاہی مراکز شامل تھے، سب ایک دوسرے سے متصل تھے اور ان کے گرد برج و بارو سے بنی ہوئی دیواریں کھنچی ہوئی تھیں۔ دارو شفا یا اسپتال کے جس کی ایک الگ بلڈنگ تھی، اس کو علم طب حاصل کرنے والوں کے لیے میڈیکل کالج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ رب رشیدی کمپلیکس میں جڑی بوٹیوں کی سائنسی اور علمی بنیادوں پر کاشت کی جاتی تھی۔ ان جڑی بوٹیوں کی جماوری یا ان کے مفید اجزاء کو پودوں سے کاٹنے اور چھانٹنے کا عمل ایک خاص زمانے اور موسم میں ہی انجام پاتا تھا۔ اور یہ سارا کام ایک خاص آب و ہوا میں انجام دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اگر ان جڑی بوٹیوں کو خاص زمانے اور موسم میں نہ اکھاڑا جاتا یا نہ کاٹا جاتا تو وہ اپنی خاصیت گنوا دیتی تھی۔ آویشن نامی پھول جولائی اور اگست کے مہینے میں کھلتے ہیں اور طبی مقاصد اور علاج و معالجے کے لیے جڑی بوٹیوں کو اسی وقت اور پیڑ پودوں سے کاٹنا چاہیے جب کلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کلیاں، پتے اور نازک شاخیں 10 سے 12 سینٹی میٹر تک توڑی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہیں سائے میں سکھانے کے بعد ان کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ اس وقت فصل بہار کے آخری ایام ہیں۔ پھول ہمیشہ بہار میں ہی چنے جاتے ہیں اور پھولوں کو شاخوں سے اسی وقت چننا صحیح ہوتا ہے جب وہ پوری طرح کھل جائیں۔ جب پھول پوری طرح کھل جاتے ہیں تو دوا کی خاصیت اس میں پوری طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ پھولوں کو چن لینے کے بعد انہیں فوراً خشک کرنے کے لیے مناسب جگہ پر رکھ دینا چاہیے۔ صوبے مشرقی آذربائیجان میں جڑی بوٹیوں کی ہربل اور آرگینک خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ اس فرق کو گل ماہور کے جسوں میں بھی، جب وہ موسم بہار کے آخر یا پھر گرمی کے موسم میں اپنے تکامل کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں، بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ رب رشیدی میں جڑی بوٹیوں کی جو کاشت ہوتی تھی اور جس طرح سے ان سے علاج و معالجے کی دوائیں تیار کی جاتی تھیں، وہ آج کی سائنس سے مکمل طور پر یکسانیت نہیں رکھتی تھی۔ مختلف اقسام کی دواؤں کو کئی کئی برسوں کے استعمال کے لیے مٹی کے بڑے بڑے برتنوں اور گھڑوں میں رکھا جاتا تھا اور پھر انہیں دارالشفا کے پاس بنے ہوئے گوداموں میں بہت ہی حفاظت سے رکھا جاتا تھا۔ بعض دوائیوں کو جن میں آفس نتین یا خارا گوش، کندور رومی، روغن کرچک اور روغن اقرب کو خواجہ رشید الدین کے حکم اور سفارش پر دوسرے ملکوں سے منگایا جاتا۔ رب رشیدی کمپلیکس میں ان دواؤں کی پیداوار پر نگرانی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے مختلف اقوام کے وہاں رجوع کرنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں آنے والے لوگوں کے قافلے اپنی ضرورت کی دواؤں کو حاصل کرنے کے لیے کافی دنوں حتیٰ مہینوں تک انتظار کرتے اور وہاں ٹھہرے رہتے تھے۔ جب انہیں ان کی ضرورت کی دوائیں مل جاتی تھیں تبھی وہ وہاں اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹتے تھے۔ ہمارے گرد و پیش بہت سے پودے اور ہربل یا جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے بارے میں ہماری معلومات نہیں ہیں اس لیے ان سے استفادہ کرنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ انہی گھاس پودوں میں سے بعض ایسے ہوں جن میں بے پناہ طبی خاصیت پائی جاتی ہو اور جو مختلف امراض اور موت سے انسان کو نجات دلا سکتی ہوں۔ ان سڑکوں کے کنارے گھاس یا ہربل اگی ہوئی ہے۔ کبر ایک خوبصورت گھاس ہے جس کی متعدد شاخیں ہوتی ہیں جو لمبے لمبے روئیں سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ یہ گھاس یا پودا خشک اور گرم آب و ہوا میں زیادہ ہی رشد اور بڑھتا ہے اور اس کے اندر 40 دواؤں کی خاصیت ہوتی ہے۔ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس علاقے میں صرف خیبر ہی نہیں اگتی بلکہ اس طرف قدر اونچائی پر رازیانہ نام کا بھی گھاس یا پودا اگتا ہے جس کے پھول زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ رازیانے کے پتے اور بیج میں خاص طور پر دواؤں کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ جب اس کے پھل پک جاتے ہیں اور زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں تو انہیں توڑا جاتا ہے۔ خیبر نامی پودے کی کئی ہزار سال قبل شناخت کی گئی تھی اور اسی وقت سے اس کو دواؤں کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا۔ رازیانہ نام کے پودے کے 150 گرام ہرے پتے میں، جس سے دوا بنائی جاتی ہے، 2.8 گرام پروٹین، 100 ملی گرام کیلشیم، 51 ملی گرام فاسفورس، 2.7 ملی گرام آئرن، 397 ملی گرام پوٹیشیم، 4.4 گرام فیٹ یا چربی، 4.5 گرام کاربوہائیڈریٹ اور کچھ مقدار میں وٹامن اے اور سی پائی جاتی ہے۔ بعض جڑی بوٹیوں اور پودوں کو بہتر نمو اور رشد کے لیے ریتیلی خشک زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض کو ایسی زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کھاد وغیرہ بھی موجود ہو۔ طب سنتی کے حکیموں کے مطابق خیبر کو اپنی نمو اور رشد کے لیے خشک اور گرم موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا پھل، اس کی جڑیں اور چھلکے کافی مقوی ہوتے ہیں۔ گٹھیا یا جوڑوں کے درد، بدن میں ورم، ہچکی، سینے کے بلغم اور معدے کی گرمی کے علاج کے لیے کافی مفید ہوتے ہیں۔ رازیانہ پودا جب بڑا اور مکمل ہو جاتا ہے اس میں پھول کھلنے لگتے ہیں۔ تو جب پھول کھلنے کی شروعات ہوتی ہے تو جون کے مہینے میں اس کے پتوں کو توڑ لیا جاتا ہے۔ رازیانہ کی جڑیں جو زخیم اور سفید اور خوشبودار مخروطی شکل میں ہوتی ہیں زمین سے نکال کر دھوئی جاتی ہیں اور پھر پانی سے ان کو اچھی طرح دھونے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے اور سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ कैबर में इसकी शाखें अलग होती हैं और फिर वही शाखें लकड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर वही शाखें ज़मीन बूस होकर ज़मीन पर फैल जाती हैं। कैबर के पत्ते सादे होते हैं, इसमें किसी भी तरह का खुरदुरापन नहीं होता। इन पत्तों का रंग सब्ज़ होता है, जिनमें कांटों की मानिंद दो नोके बनी होती हैं और वो शाखों से मुत्तसिल होती हैं। कदीम तिब के हुकमा के बकौल राजियाना की फितरत व खसूसियत गर्म और खुश्क होती है और उसमें 20 से ज़ायद अमराज की दवा पाई जाती है। उसको ख़ास तौर पर अशियाए खुराक, दवा साजी, साबुन और इन जैसी दीगर चीज़ों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। कैबर काफ़ी मजबूत होता है, वो नमक और कम पानी में भी रुष्ट करता है। ये पौधा मरन, शबिस्तरा, अहर और कैलिबर शहरों के मजाफात में पाया जाता है। जब ये पौधा उगता है तो फैला हुआ होता है और ज़मीन पर उसका पूरा साया होता है, या यूँ कहा जाए कि ज़मीन को ढांपे रहता है। ये पौधा मिट्टी और पानी को ज़खीरा करने में मदद देता है। कैबर के फूल पहले ही साल शाखों में खिलने लगते हैं। उसके बालाई और आखिरी हिस्से में उसका फल लगता है, जिसको नहंज कहते हैं और देखने में ये बेजवी शक्ल और लंबाई में होता है। उसके अंदर काफ़ी गूदा होता है, शुरू में उसका रंग सब्ज होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लाल हो जाता है। कैबर का जायका तीखा मगर मज़ेदार और खुशबूदार होता है। उसको खाने पीने के आइटम में जैसे पिज्ज़ा, मछली, गोश्त और सलाद में खटास के तौर पर भी डालते हैं। इसका फल इसकी कलियों से बनता है। पोलिनेशन का काम हशरात या कीड़े मकोड़े अंजाम देते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि घास पौधों को मुख्तलिफ मकामात पर उगाने और उनके दाने या बीज इधर से उधर मुंतकिल करने का काम कीड़े मकोड़े या हशरात ही अंजाम देते हैं। हमारे गिर्दोपेश बेशुमार चरागाहें, सरसब्ज मैदान और जंगलात हैं, जिनकी वजह से मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े भी यहाँ पाए जाते हैं और नतीजे में पौधों के फूलों के अंदर जो ज़र्रात या बीज होते हैं उनको चुन चुन कर ये कीड़े ही इधर से उधर ज़मीनों में गिराते हैं ताकि ये घास पौधे उगते रहें। इन कीड़े मकोड़ों की बदौलत मुख्तलिफ किस्म की खुशबूदार घास और पौधे उगते हैं और फिर इन बाज़ घासों और पौधों से इत्र भी तैयार किए जाते हैं और फिर यही पौधे अपनी जानिब हशरात को भी जज्ब करते हैं। नहंज और दीगर पौधों में मौजूद मौसिर मवाद और शहद इन हशरात की खुराक होती हैं। शहद की मक्खियाँ जो मुख्तलिफ फूलों और पौधों के रसों से शहद तैयार करती हैं, वो फूलों और फलों के बीज को दीगर इलाकों में फैलाने और उनसे पौधे उगाने में अपना किरदार निभाने के साथ साथ जड़ी बूटियों को वजूद में लाने का अहम जरिया शुमार होती हैं। शहद की मक्खी जड़ी बूटियों से शहद और मौसिर खवास निकालती हैं और फिर इन बीजों के साथ वो अपने छत्ते में वापस लौटती हैं। छत्ते में हज़ारों की तादाद में शहद की मक्खियां रहती हैं, जो मुख्तलिफ पौधों और फूलों का रस निकालती हैं। जिन खेतों में दवाओं की जड़ी बूटियां बोई जाती हैं, वो शहद की मक्खियों की परवरिश की सनत और शहद तैयार करने का बेहतरीन मकाम होते हैं। एक तहकीक से इस बात का पता चला है कि टेनेस्टम या शासपरम नामी जड़ी बूटियाँ मिग्रेन दर्द का इलाज करने में काफ़ी मौसिर व मुफीद होती हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के मुहक्किकीन का कहना है कि माइग्रेन दूसरा सबसे बड़ा सर का दर्द है और उन्होंने माइग्रेन के इलाज के कई तरीके भी बयान किए हैं। मिन जुमला ये कि माइग्रेन के दर्द में टेनेस्टम और शासपरम को इस्तेमाल करना चाहिए। ये घास लंबी लंबी होती है, जिसकी डंडियों में फांक होती है। इस घास की लंबाई 50 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है। और उसके ऊपरी हिस्से से पुदीने की तरह की खुशबू आती है। टेनस्टम नाम की घास रेतीली जमीन में और उस मकाम पर उगती हैं जहां करीब से चश्मे का पानी बहता हो। ये घास 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगती है। जून और जुलाई के महीने में इस घास को जब उसमें फूल लगते हैं बड़ी तादाद में, सराब शहर की पहाड़ियों में देखा जा सकता है। आज़रबाईजान की कदीम तिब में इस घास के रस को दर्द मैदा, गैस्ट्रिक और पेट में कीड़े के इलाज, नीज ख़वातीन के महाना अय्याम को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता चूंकि इस तरह की घास पौधों में कीमियाई मादे होते हैं, इसलिए डॉक्टरों के मशवरों से ही उनका इस्तेमाल होना चाहिए। हर्बल दवाओं या जड़ी बूटियों में मुतअद्दिद किस्म के खवास होते हैं और बहुत ही खासियतें उनके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए उन्हें बाज़ बीमारियों के लिए एक मौसिर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन जड़ी बूटियों में पाए जाने वाले मादे जो सानवी मेटाबोल के नाम से शोहरत रखते हैं, वो बायोकेमिकल के ख़ास और पेचीदा अमल के ज़रिए घास के वज़न के 1% से भी कम मकदार में इस घास से निकलते हैं। मुमकिन है कि इस घास के किसी ख़ास हिस्से, मिसाल के तौर पर सिर्फ जड़ में या टहनियों, शाख, बीज, पत्ते और फूल में ये मौसिर मादा हो, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि घास का सारा हिस्सा दवाओं के लिए काम में आता है। खाकशीर भी एक बड़ी जड़ी बूटी है जिसके बारीक दाने दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गुले माहूर या अलफ खरगोश जैसी घास और पौधों में दवाओं की खासियत के पत्तों और पेड़ में होती है। इसी तरह खत्मी नाम की घास के फूल, पत्ते और जड़ सब के सब तिब्बे कदीम में दवा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा पहाड़ी चाय नाम की जड़ी बूटियां भी जोशांदे और खुशबूदार चाय के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। गुले माहूर 2 साल की ज़िंदगी वाला एक पौधा होता है जिसमें पहले साल में पत्ते निकलते हैं जो ज़मीन पर ही बिछे होते हैं, जिसकी ज़ाहरी शक्ल चुकंदर की मानिंद होती है, और दूसरे साल में सर्दियां गुजर जाने के बाद उसमें टहनियां वजूद में आती हैं। मजमूई तौर पर मौसम बहार के आगाज़ से ही जड़ी बूटियों की ज़िंदगी भी दोबारा शुरू हो जाती है। खत्मी नाम के पौधे बड़े बड़े फूल और उसके बिखरे हुए पत्ते निस्बतन ज़खीम टहनियों और शाखों के हमराह जो लंबी भी होती हैं ज़ाहिर होते हैं। मौसम बहार में जड़ी बूटियां और मुख्तलिफ घास पौधे तेज़ी के साथ रुश्द व नमो करते हैं। खाकशीर नाम की जड़ी बूटी के फूल जर्द होते हैं और उसके दाने लंबाई में 5 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 1 मिलीमीटर होते हैं। खाकशीर के दाने खुरजीन के ग़िलाफ़ में पोशीदा होते हैं। इस मौसम में पहाड़ी चाय नाम की जड़ी बूटी या पौधा भी ज़ाहिर होता है। उसके फूल सुर्ख और अरगवानी रंग के होते हैं। उसके पत्ते बेजवी शक्ल के लंबे लंबे होते हैं। गुले माहूर को रुष्ट किए हुए अब 2 साल का अरसा गुजर चुका है। जर्द रंग के फूल उसकी टहनी के निचले हिस्से में होते हैं। गुले माहूर नाम के पौधे की शाख ज़खीम और उस्तवानई शक्ल की होती है। سورج کی گرمی اس پودے کے نمو اور رشد کا سب سے اہم محرک ہے۔ ماہرین گلوگیاہ کا کہنا ہے کہ گلے ماہور کی رشد اور اس کے پھل کے تیار ہونے میں سورج کی دھوپ کا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سے پودے پھلوں اور پھولوں کے اعتبار سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس وقت گرمی کا موسم ہے اور خاکشیر کے پھل پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں، اور پھل کے اندر خاکشیر کے باریک دانوں کو دیکھا اور اس وقت نکالا جا سکتا ہے۔ شدید گرمی اور مقامی سطح پر چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے پہاڑی چائے نچلے اور ہموار علاقوں سے غائب ہو گئی۔ صرف صوبے کی پہاڑیوں اور معتدل آب و ہوا والے علاقے میں ہی یہ پودا آپ کو ملے گا۔ گلے ختمی کا پودا اس موسم میں ابھی تر و تازہ ہے اور اس کے برگ و گل ابھی پوری طرح سے کھلے نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں ابھی توڑا جا سکتا ہے۔ اب یہ پودا اپنے دوسرے سال میں ہے اور مٹی سے اس کی جڑیں باہر آنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ مٹی سے جڑوں کو باہر نکالنے اور ان کو صاف کرنے کے بعد دواؤں اور ہاتھ و صورت پر لگانے اور ملنے کے لیے ان سے استفادے کی غرض سے ان کو خشک کیا جاتا ہے۔ گلے ماہور کے پوری طرح کھلنے کا آخری زمانہ آ گیا ہے۔ گلے ماہور کے درخت سے جو زیادہ دوائیں نکلتی ہیں وہ اس کی بالائی ٹہنیوں اور پتوں سے نکلتی ہیں۔ گلے ماہور کے درخت کے پتے اور بالائی شاخیں حلق میں درد اور ٹانسلز میں ورم کو کم کرنے کے لیے دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ یہ بواسیر کے مرض میں فائدہ کرتی ہیں۔ قدیم طب کے حکما کے مطابق گلے ماہور کی خاصیت بہت زیادہ گرم اور خشک ہوتی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قابض ہوتا ہے اور دانتوں کے درد میں تسکین پہنچاتا ہے۔ علاوہ ازیں بالوں کے بڑھانے اور گھنا بنانے میں بھی مفید ہے۔ اب آہستہ آہستہ موسم خزاں آن پہنچا ہے اور زیادہ تر گھاس پودے ٹھنڈی ہواؤں اور صوبے میں آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث مرجھانے لگے اور ختم ہونے لگے ہیں۔ موسم سرما آتے ہی یہ سارے گھاس پودے اور جڑی بوٹیاں دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی مختصر زندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔